प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात श्रोताओं, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे में आप सबका स्वागत है। सुबह का वक्त है, शायद आप अभी हमें सुनते वक्त गाड़ी के शीशे से बाहर झांक रहे होंगे, या फिर दफ्तर जाने के फेर में तौलिये से बाल पोंछकर बालकनी में आ गए होंगे। अगर सच में आ गए हैं तो महसूस कीजिए इस ताजा हवा को, आह कितना सुखद। श्रोताओं, मुझे आशा है कि आज की खुशनुमा सुबह की तरह आपका पूरा दिन भी खिलखिला उठेगा, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम आज सवेरे से जुड़ चुके हैं। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्रणाम। मैं हूं प्राची प्रिया और मेरे साथ है मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। सुप्रभात तन्वी।
सुप्रभात प्राची। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, लाइक प्राची मेंशन्ड, इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस डे बिकॉज टुडे इज सैटरडे। सो अ वेरी हैप्पी सैटरडे, मेक ईच डे योर मास्टरपीस स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सैटरडे मॉर्निंग। एंड इट्स एक्चुअली अ जेंटल रिमाइंडर इफ यू थिंक ऑफ इट दैट लाइफ इज meant to be enjoyed, savored, and even celebrated. So have a fabulous weekend, and today is 13th of July. It's going to be an important day, and we are going to inform you how this particular day is so important. So let's begin our program with the headlines. Health Minister J.P. Nadda yesterday reviewed the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Ayushman Bharat Digital Mission with senior officials of the National Health Authority in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said these schemes are successfully fulfilling their intended purposes. He added that around 34.7 crore Ayushman cards have been issued and around 7.35 crores hospital admissions have been facilitated under these initiatives, amounting to more than 1 lakh crore rupees. Mr. Nadda also directed the officials to ensure that the benefits of these visionary schemes reach the most needy and vulnerable sections of society.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के गोरेगांव की इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी NISCO प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम को श्री मोदी भारतीय समाचार सेवा सचिवालय में INS सर्विस टावर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 16,600 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। करीब 12 किलोमीटर लंबी ये दोहरी ट्यूब सुरंग को ठाणे से बोरीवली तक की यात्रा 12 किलोमीटर कम की जाएगी और लगभग एक घंटा इसमें कम लगेगा। श्री मोदी 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में सुरंग कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। वे नवी मुंबई के तुर्भे में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे।
नीति आयोग हैज रिलीज्ड एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 एंड 24 एंड सेड इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स इज द कंट्रीज प्रिंसिपल टूल फॉर मेजरिंग नेशनल एंड सब नेशनल प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द इंडेक्स वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी इन द प्रेजेंस ऑफ नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम अमंग अदर्स। Subramaniam said the composite score for India improved from 57 in 2018 to 66 in 2020-21 and further to 71 in 2023-24. SDG India Index measures and tracks national progress of all states and union territories on 113 indicators. It computes goal-wise scores on the 16 SDGs for each state and UT. These scores range between 0 to 100. If a state or UT achieves a score of 100, it signifies that it has achieved the targets. The index not only highlights achievements but also encourages states and UTs to learn from each other to close outcome-based gaps.
मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना शासकीय पीजी कॉलेज भवन छिंदवाड़ा में कराई जाएगी। मतगणना के सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 332 मतदान केंद्रों में मतदाताओं द्वारा ईवीएम में डाले गए मतों की गणना की जाएगी। मतगणना लगभग 20 राउंड में संपन्न कराई जाएगी।
Regarding the votes only, let me add some more information. Counting of votes has begun for by-elections in 13 assembly seats spread over 7 states. Voting was held on Wednesday for Raiganj, Ranaghat Dakshin, Bagra and Maniktala in West Bengal, Dehra, Hamirpur and Nalagarh in Himachal Pradesh, Badrinath and Mangalore in Uttarakhand, Rupauli in Bihar, Amarwada in Madhya Pradesh, Vikramandi in Tamil Nadu and Jalandhar West in Punjab.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती आज से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 आयोजित करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में देश भर से 45 से अधिक कॉलेज संस्थान और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। प्रतिस्पर्धा में रोबोट निश्चित समय सीमा में जटिल कार्यों को पूरा करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में विजयी टीम वियतनाम के क्वान निन में अंतर्राष्ट्रीय एशिया प्रशांत प्रसारण संघ रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। आईआईटी दिल्ली ने बताया कि डीडी रोबोकॉन इंडिया इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। इसके द्वारा छात्रों की इंजीनियरिंग और रोबोटिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मंच मिलेगा। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर एस के सिन्हा ने इस प्रतिस्पर्धा के आयोजन के लिए प्रसार भारती का आभार जताया।
Let's talk about some information about sports. In Wimbledon tennis, 7-time champion Novak Djokovic has set up summit clash with defending champion Carlos Alcaraz in men's singles in London tomorrow. Djokovic of Serbia overpowered 25th-seeded Italian Lorenzo Musetti, while Spaniard Alcaraz defeated Russian Daniil Medvedev in the last 4. 7th-seeded Jasmine Paolini will take on 31st-seed Barbora Krejcikova in the women's singles final this evening. Krejcikova of Czech Republic entered her first Wimbledon final after securing a comeback win over Kazakhstan's Elena Rybakina in the semifinals on Thursday. Paolini of Italy defeated Croatia's Donna Vekic in the fiercely fought semi-final to secure place in the final. In men's doubles, British-Finnish duo of Henry Patton and Harry Heliovaara will lock horns with 15th seed Australian pair of Max Purcell and Jordan Thompson in the title clash this evening.
के मैदान में अब हम नजर डालते हैं तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। शुभमन गिल के नेतृत्व में पहले मैच में भारत को जिम्बाब्वे से 13 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने अगले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ले ली थी। दूसरे मैच में भारत ने मेजबान टीम को 100 रन से करारी शिकस्त दी थी। वहीं तीसरे मैच में जिम्बाब्वे 23 रन से हार गया था। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच हरारे में कल ही खेला जाएगा।
In some more news from the world of tennis only, India's N. Sriram Balaji and his partner Gonzalo Escobar of Ecuador have advanced to the men's doubles finals at the Braunschweig Challenger, also known as Bravo Open in Germany. They defeated the 4th-seeded Ukrainian-Dutch pair of Denis Molchanov and Matvey Middlekoop 6-3-7-6 last evening. The top-seeded Indian-Ecuadorian duo will lock horns with Dutch combination Sander Arends and Robin Hayes, seeded second in the final today. The match will start at 4:30 p.m. Indian Standard Time.
श्रोताओं, अब आज के कार्यक्रम आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें।
So let's talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad first. About Chennai, if we talk about, Canadian asset management firm Brookfield has acquired a majority controlling stake in Tamil Nadu-based renewable energy platform Leap Green Energy with $200 million investments. Brookfield has made an upfront commitment to make an investment of about $200 million through a combination of subscription of new shares and acquisition of shares from existing investors and plans incremental equity infusion of about $350 million. Tamil Nadu has a total addressable renewable commercial and industrial market of 20 gigawatts and is a key target market for the Leap Green. And let's talk about Bengaluru. The 27th edition of Bengaluru Tech Summit, to be held from November 19th to 21st of November, is expected to have participation from over 40 countries. Karnataka IT Minister Priyank Kharge has informed that the three-day tech summit in the IT city of Bengaluru will see over 46 speakers deliberating in 85 sessions. Over 5,000 delegates are invited for the summit, along with over 500 startups and 700 exhibitors. The minister informed that the state has opportunities for tech companies at the Aerospace Park in Belagavi, Semiconductor Hub in Mysuru and Startup Ecosystem in Mangaluru. Priyank Kharge informed that the Tech Summit in November will create opportunities for idea exchange, business growth and international collaborations. Different conferences arranged during the summit will focus on IT and deep tech, biotech and health tech, startup ecosystems, Global Innovation Alliance and a India-USA Tech Conclave. There is also a plan to host CEO Conclave, Startup Conclave and fireside chats with renowned personalities. There will be an increased focus on B2B meetings, allowing the delegates and companies to engage in more structured and productive sessions. Now, let's go to Hyderabad. Telangana Chief Minister Revanth Reddy has directed officials to establish Hyderabad Disaster Response and Assets Monitoring and Protection, HYDRA, to offer a broad array of services to the public in line with the rapid expansion of Hyderabad. Mr. Reddy decided to constitute HYDRA under the National Disaster Management Act and asked officials to study its establishment and finalize the modalities for implementing it. He suggested creating a mechanism to coordinate the services of the Greater Hyderabad Municipal Corporation, the Water Supply Sewerage Board, Vigilance, Traffic, the Energy Department and the Police to implement HYDRA effectively. The existing Enforcement Vigilance and Disaster Management Department will be reorganized accordingly. He directed the officials to prepare detailed proposals regarding staff requirements and the possibility of sending employees on deputation from other departments to work in HYDRA. He also said that HYDRA should manage an area of 2,000 square kilometer up to the outer ring road and align its geographical limits with the existing zones of the city for operational convenience. He asked them to keep ready the draft proposal for HYDRA before the start of the upcoming assembly session. The Chief Minister held a review meeting in Hyderabad last evening on setting up HYDRA and to finalize its modalities. So these were the updates from three cities, Chennai, Bengaluru and Hyderabad. We definitely have more information on Delhi, Mumbai and Kolkata. So let's ask Prachi here.
Bilkul, shrotaon, chaliye ruk kare, ab hum Delhi ki khabron ki or. भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ कल प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाते और तख्तियां लहराते हुए आईटीओ स्थित दिल्ली सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली खरीद समायोजन शुल्क को 6.75 से बढ़ाकर 8.75 कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एलएलबी पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव को कल अस्वीकार कर दिया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद में ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने उन्हें बताया कि ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी ग्रंथ के विवादास्पद हिस्से को शामिल करने का कोई प्रश्न नहीं है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबरॉय की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय में कल एक बैठक का आयोजन किया गया। महापौर ओबरॉय ने इस बैठक में बताया कि बरसात में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले बढ़ जाते हैं, जिससे निपटने के लिए सभी को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को इस मुहिम से जोड़ने के लिए दिल्ली के सभी RWA के साथ बैठक कर ली गई है, जिसमें उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में डेंगू की रोकथाम के उपाय के बारे में जागरूकता फैलाई है। इसके अतिरिक्त डॉ ओबरॉय ने सभी उप स्वास्थ्य अधिकारियों को निगम के कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करने और निर्देशन दिए। उन्होंने जलभराव के स्थानों को चिन्हित करके दवाई का छिड़काव करने और निर्माण स्थलों की विशेष रूप से निगरानी करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी घरेलू प्रजनन जांचकर्ताओं को घरों में जाकर मच्छरों की उत्पत्ति की जांच करने के लिए कहा है। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नेशनल बुक ट्रस्ट NBT और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में कल एक फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। NBT ने बताया कि फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य सन 1999 में हुए करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र सेना के पराक्रम को प्रदर्शित और युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। प्रदर्शनी में शामिल तस्वीरों को भारतीय सेना की तरफ से उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा यहां एक बुक रीडिंग कॉर्नर बनाया गया है, जहां करगिल युद्ध से जुड़ी NBT की पुस्तकें यात्री पढ़ सकते हैं। 12 से 26 जुलाई तक आयोजित इस प्रदर्शनी को देखने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार 2 और 3 का प्रयोग करके व्यूअर्स गैलरी में पहुंचा जा सकता है। इसमें प्रवेश निःशुल्क है और इसके लिए मेट्रो टिकट लेने की भी आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दक्षिणी दिल्ली स्थित जहां पनाह सिटी फॉरेस्ट में कल एक पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में 16 निजी स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए श्री भारद्वाज ने बताया कि ये अनुभव वहां मौजूद बच्चों और जनता को हमेशा याद रहेगा। उन्होंने आशा जताई कि लोग पेड़ पौधों के महत्व को समझेंगे, खासकर दिल्ली में जहां तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया था, वहां तो जरूर समझेंगे। आइए अब चलें मुंबई की समाचारों की तरफ। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को मॉनसून सत्र के अंत में विधानसभा का सत्र समाप्त कर दिया है। सदन में सत्रावासन आदेश को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने पढ़ा। ये सत्र 27 जून को शुरू हुआ और अतिरिक्त बजट 28 जून को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य के वित्त मंत्री द्वारा सदन में पेश किया गया। कोलकाता की खबर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की गिनती आज होगी। अगले कुछ मिनटों में यानी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सभी मतगणना केंद्रों पर 3 स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्रों के 200 मीटर की परिधि के आसपास धारा 144 लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल में रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे।
So these were the 6 metro city updates, and now let's talk about the weather of these cities. If we talk about Chennai, it's expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or even thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees and the maximum will be around 35 degrees. And Bengaluru and Hyderabad both are expected to have generally cloudy sky with either light rain or drizzle. The temperature of Hyderabad will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 32 degrees. And for Bengaluru, the minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 30 degrees.
और श्रोताओं, आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की आशंका है। अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने के अनुमान है। यहां सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। और वहीं अगर बात करें हम कोलकाता की, तो वहां भी बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की सी बूंदाबांदी होने की आशंका है। यहां अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के बीच रहने के पूर्ण आसार हैं।
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डे 13th ऑफ जुलाई। व्हाट ऑल हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे? Let's talk about the year 1905 when Mahatma Gandhi opposed Bengal partition and supported boycott of British goods. During Gokhale Lajpat Rai's deputation to Britain, he appealed to colonial statesmen to treat India as an integral part of the empire with consideration. Sanjeevan, a weekly from Calcutta, also raised the motto to boycott British goods.
बिल्कुल, और आज क्योंकि 13 जुलाई है और अगर हम जाएं सन 1803 में, तो आज के ही दिन राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था। राजा राम मोहन रॉय ने छात्रों के पहले बैच को लेकर अलेक्जेंडर डफ की मदद की। उन्होंने अभिभावकों को यह भी आश्वासन दिलाया था उस वक्त कि कॉलेज में बाइबल पढ़ने का मतलब धार्मिक रूपांतरण नहीं है, जब तक कि वह आंतरिक आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित न हो।
In 1947, the Indian Independence Bill was moved in the British Parliament on 4th of July 1947, which became an act on this particular day, that is 13th of July 1947.
Tanvi, जैसा अभी आपने बताया कि सन 1905 में श्रोताओं, आज के ही दिन कोलकाता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। इस आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी, जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था।
In 1974, India's first ODI, that is One Day International, was played with England at Headingley.
और सन 1998 में श्रोताओं, आज के ही दिन भारत के एलिंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम ATP खिताब भी जीता था।
If I talk about the same year 1988, the second developmental launch of ASLV, stretched Rohini satellite series, that is SROS 2, happened. This carried remote sensing payload of German space agency in addition to gamma ray astronomy payload. And the last but not at all the least, in the year 1998, India and Germany signed an agreement on promoting and protecting investment in Bonn. Now let's come to our section where we talk about the people who either took birth on this particular day or they have left for their heavenly abode on this day. If we talk about the death anniversaries, let me just mention today is the death anniversary of Neelu Phule, an Indian actor known for his roles in Marathi movies and Marathi theatre. Neelu Phule acted in around 250 Marathi and Hindi movies during his film career. He was most prominently seen playing the roles of notorious villains in the movies. Well, I must say that actors are important. Even the character actors are so important.
Very much.
Although we don't recognize them with their names, but when we see their photographs and their acting, they are an equal part.
Anyway, they impart their colors on our heart, right?
Absolutely. And Neelu Phule was one of them.
बिल्कुल, और श्रोताओं, इसी के साथ मैं आपको ले चलूंगी। जैसा कि इन्होंने नीलू फूले का जिक्र किया तन्वी ने हमारे लिए, हम आपको बताएंगे कि आज 13 जुलाई है और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार फ्रीडा खालो की पुण्यतिथि है। चटक रंगों वाली अपनी अनूठी पेंटिंग्स के कारण उन्होंने दुनिया भर में अपना ध्यान खींचा। उनका एक परसेप्शन था तन्वी, एक उनका थॉट था, वो एकदम रियल थॉट था। वो कैसे, उनकी पेंटिंग्स में तकरीबन 140 से भी अधिक उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई होगी, जिसमें कि आई थिंक 55 यानी कि 55 सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं उन्होंने अपने बेडरूम में खुद बैठ करके मिरर के सामने बनाई। सोचिए कितना मेस्मराइजिंग मोमेंट होगा।
बिल्कुल,
जिसको हम सेल्फ लव की बात करते हैं, वो सेल्फ लव हमें लगता है कि उन्होंने एक मैसेज दिया पूरे हमारे समाज को, चाहे वो वेस्ट का समाज हो चाहे ईस्ट का, कहीं के भी लोगों को मैसेज देना तो एक यूनिवर्सल मैसेज होता है।
बिल्कुल, और ये हम बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, हम आज सेल्फ लव की बात करते हैं।
और ये उस वक्त से इस चीज का प्रचलन था, एटलीस्ट उनके उनके जहन में तो ये ख्याल था ही था।
बिल्कुल,
तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उनके कच्चे और भावनात्मक आत्मचित्र अक्सर दर्द, विकलांगता, चोट और नाजुकता जैसे विषयों को दर्शाते हैं, साथ ही किसी व्यक्ति के जीवन के मनोवैज्ञानिक घावों का भी परिचय देते हैं।
एंड वी ऑल्सो हैव समबडी, मनोहरी सिंह, टूडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी। ही इज एन इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, सैक्सोफोनिस्ट एंड वॉज द मेन अरेंजर ऑफ सेमिनल फिल्म कंपोजर राहुल देव बर्मन। ही वर्कड विद वासुदेव चक्रवर्ती एज अ म्यूजिक कंपोजर एंड द डुओ वॉज popularly known as Basu Manohari. Let me tell you that he decided to try his luck in Mumbai and he moved there in 1958. That was long time ago. And his first break was in the same year with S.D. Burman as a saxophonist for the movie Sitaron Se Aake. And he played a very hit track composed by S.D. Burman himself from the movie Guide. So let's just play that track and refresh ourselves.
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।
करेंगे हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय को भी उनकी जयंती पर। इससे पहले कि उनके बारे में मैं आपको कुछ और बताऊं, आप सुनिए उनकी फिल्म से उन पर फिल्माया उन्हीं का एक गीत। बीना राय 50 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। बीना राय को सन 1960 में आई फिल्म घूंघट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।
We are also remembering today Prakash Mehra, a legendary Indian film director and producer known for his work in Hindi films. He was one of the pioneers of masala films along with Nasir Hussain and Manmohan Desai. Well, if we talk about the movies Khoon Paseena, Hera Feri, Mukaddar Ka Sikandar, La Waris, Namak Halal and many more, we mention Prakash Mehra, and he was one of the first Bombay directors to try venture into Hollywood. And in the late 80s, he tried a joint venture to make the movie The God Connection, but unfortunately, it never came to fruition. So let's enjoy the track, the title track from one of his films.
और श्रोताओं, आज जयंती है केसरबाई केरकर की। केसरबाई केरकर भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका थी। वे जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खां की शिष्या थी। जयपुर अतरौली घराना, जिसे जयपुर घराना, अतरौली, जयपुर घराना और अल्लादिया गायकी के नाम से भी जाना जाता है, तन्वी, एक हिंदुस्तानी संगीत की एक बहुत ही बेहतरीन, जो एक प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो हमारी केसरबाई केरकर रही। उनका एक गीत है जात कहाँ हो।
Yeah.
Today is also the birthday of Nihal Sareen, an Indian chess grandmaster and chess prodigy. In 2018, he passed the Elo rating of 2600 at 14 years old, which at the time made him the third youngest player in history to do so. It's also the birthday of Sir Patrick Stewart, an English actor, and it's also the birthday of Veeramuthu Ramaswamy, an Indian lyricist, poet and novelist working in the Tamil film industry.
और प्यारे श्रोताओं, अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का. अनुमति दीजिए प्राची प्रिय और तन्वी खुराना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की. लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर. अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर.
Stay tuned for समाचार प्रभाता हिंदी न्यूज बुलेटिन. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.